आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
महाराज,
हम सभी लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि यदि हम श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करें, उनके गुणों का स्मरण करें, उनके गुणों का निरंतर चिंतन करें और उनके जैसे ही गुण हमारे भीतर आवें, इस तरह की भावना भाएं, तो हमारे जीवन में निर्मलता आती है। पुनः तु चित्तम दुरितान जनेभ्यः, भगवान आपकी भक्ति मेरे मन को निर्मल करती है। कब करती है? जबकि हम पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान के गुणों के प्रति अपना आदर व्यक्त करें, अपना अनुराग व्यक्त करें। जिस किसी के प्रति हमारा अनुराग होता है, हम उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, हम उसकी नकल करना पसंद करते हैं, वो जैसा जैसा करता है वैसा हम करने का प्रयास करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हमारा सामने वाले के प्रति अनुराग है। ठीक इसी तरह जैसे कि संसार में हम अपने जिसके प्रति हमारा अनुराग और प्रेम होता है उसके जैसे बनने का प्रयास करते हैं, भगवान की भक्ति भी भगवान के प्रति प्रेम का नाम है। भगवान के प्रति हमारा अनुराग ही भक्ति कहलाता है। और जिसके प्रति हमारा अनुराग होता है उसका बार बार स्मरण आता है। इतना ही नहीं, उसके जो विशेषताएं हैं उनको भी हम बार बार विचार करते हैं, देखो कितना बढ़िया व्यक्ति है और फिर मैं भी वैसा ही बनूं। बस यही चार बातें भक्ति में अनिवार्य हैं। भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लिखा हुआ है कि निर्मल चित्त से अनुराग, यानी निस्वार्थ अनुराग। नहीं तो फिर भगवान से भी हमारा स्वार्थ सत्ता हो तो हम अनुराग रखें, और जब स्वार्थ नहीं सधेगा तो हम अनुराग काय को रखेंगे, और या कि स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो नहीं रखेंगे। जब भी हमारे अंदर किसी चीज के प्रति अनुराग होता है, अगर वो स्वार्थ पूर्ण है तो स्वार्थ पूरा होने पर टूट जाता है, या कि स्वार्थ पूरा नहीं हो तो भी टूट जाता है। इसलिए निर्मल चित्त से लिखा हुआ है कि आराधना या भक्ति अत्यंत निर्मल चित्त से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना। दो तरह से भक्ति हम कर सकते हैं, एक तो भगवान के बाह्य रूप की भक्ति होती है, एक उनके अंतरंग के गुणों की भक्ति होती है। यहाँ तक कि बाह्य जो रूप है उसकी भक्ति करते हुए मानतुंगा आचार्य महाराज ने लिखा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। भगवान जितने भी शांति के और वीतराग पर परमाणु इस संसार में थे, वो तो सब आपकी देह के निर्मित करने में लग गए,
अब वो बचे नहीं संसार में, किसी और की देह को कैसे बना सकते हैं आपके जैसा, यानी आपकी देह ही सबसे ज्यादा सुंदर। तो देह का वर्णन करके ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक जगह कहते हैं कि स्त्री नाम सतानी शतशो जनयंती पुत्रा नान्यासुतम सदभुवम जननी प्रसूता। आपकी मां का वैशिष्ट है कि आपके जैसे पुत्र को जन्म दी, क्योंकि सूर्य ही प्रकाशमान होता है, नक्षत्रों से प्रकाश नहीं होता, और उस सूर्य को जन्म कौन देता है? प्राची दिशा देती है, तो उसका भी महत्व। पूर्व दिशा का इसलिए महत्व है क्योंकि वहां से सूरज निकलता है, तो माँ का इसलिए महत्व है क्योंकि वो एक तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दे रहे। तो माँ की प्रशंसा करके और तीर्थंकर की प्रशंसा करके। कभी कभी कहते हैं कि द्रौपदी को तीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो। अब बताओ, ये भी एक भक्ति का ढंग है कि आपने किन किन के कष्ट दूर करे हैं और मेरी बारी आई है तो देर क्यों लग रही है, ऐसा भी कहते हैं। तो ये एक भक्ति का ये बहुत व्यवहारिक रूप है, लेकिन इसके पीछे वास्तविकता क्या है? ना भगवान आकर के कोई द्रौपदी का चीर बढ़ाने आने वाले हैं, ना कोई भी सीता जी के कमल की रचना करने वाले हैं, ना भी हमारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। हमारे असाता के उदय में जो जो चीजें हुई हैं वे भगवान की भक्ति से इसलिए दूर हो जाती हैं क्योंकि उन क्षणों में जब हम भक्ति करते हैं हमारा चित्त निर्मल होता है, कर्मों की निर्जरा होना शुरू होती है, असाता का क्षय होता है, साता का उदय आ जाता है, हमें सारी बात अपने अनुकूल मालूम पड़ने लगती है। तो हम कहते हैं कि देखो हमारी भक्ति से ही जो है और ये सारी चीजें, भक्ति हमें मुख्य बात क्या देती है, वो हमारे चित्त को निर्मलता देती है, हमारे हृदय को निर्मलता देती है। बस हमारा प्रयत्न वही होना चाहिए कि हम भक्ति करें और हमारा चित्त निर्मल होता चला जाए, लेकिन उसके साथ हमें करना क्या पड़ेगा? बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगी हमें, इतने अकेले से नहीं होगा कि हमने भक्ति करी और चित्त निर्मल हो गया। नहीं, चित्त को निर्मल करने के लिए तो भक्ति निमित्त बनेगी, लेकिन भक्ति कैसी करें जबकि वो चित्त को निर्मल करे? अभी तो हम रोज करते हैं लेकिन हमारे चित्त की कलुषता जाती नहीं, हमारा अहंकार जाता नहीं, हमारा क्रोध जाता नहीं, हमारे भीतर जैसी श्रद्धा उमड़नी चाहिए वैसी उमड़ती ही नहीं है। तब फिर हमें जरा सा देखना पड़ेगा कि अभी हमने जो भक्ति की, हमारे मन में भगवान के गुणगान करने का जो भाव आया है, वाणी से गुणगान कर रहे हैं, शरीर से द्रव्य इत्यादि समर्पित कर रहे हैं, मन में गुणों का चिंतन कर रहे हैं, उस सब में हमें क्या सावधानी रखनी है? जब तक हम अपने विकारों को नहीं हटाएंगे तब तक ये भक्ति हमारे चित्त को निर्मल नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, जब तक हमारा फुली डिवोशन नहीं होगा, जब तक हम अपने को सरेंडर नहीं कर देंगे भगवान के चरणों में, तब तक नहीं होगा। शरणागति शब्द आता है, जब तक कि हम अपने आप को शरण में सौंप नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। इन दोनों ही बातों को आचार्य वादीराज महाराज के एकी भाव स्तोत्र में देखने में स्पष्ट झलकता है कि हाँ, सचमुच उन्होंने भगवान की भक्ति करी और उसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। उसका कारण यह था कि उन्होंने अत्यंत निर्मल चित्त होकर के और पुली विबोध होकर के भगवान की भक्ति करी, अत्यंत आत्मविश्वास के साथ भक्ति करी। भगवान के प्रति विश्वास के मायने हैं आत्मविश्वास। अगर भगवान की भक्ति से हमें ऐसा विश्वास ही ना हो कि कुछ होगा तो बताइएगा वो भक्ति क्या करेगी? हमारा विश्वास भी जरूरी है और उस विश्वास के चलते हम कोई याचना नहीं करेंगे। जिसके प्रति विश्वास होता है उससे हम कुछ मांगते मांगते थोड़ी नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि फलाने तो कभी कुछ देते नहीं है और आपका विश्वास है उन पर कि जब भी हम कहेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो आप उसकी बात को मानोगे? नहीं, हम कहोगे आपको नहीं मानूंगा, हमारा तो विश्वास है, हम तो बिना मांगे और वहां चले जाएंगे तो ठीक है। ऐसा विश्वास अगर व्यक्ति के किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो हम उसके उसके द्वारा जो चीज प्राप्त होनी है वो हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही विश्वास भगवान के प्रति हमारे मन में। और वादीराज महाराज के तो कदम कदम पर ये बात दिखाई पड़ती है कि उनका कितना विश्वास है। जाना कि तुम मम भव भवे यस्य यादृक्ष दुखम जातम यस्य स्मरणमपि मे सत्वं निश्चिनस्ति तुम सर्वेशा सतपीति चा स्वाम उपेतोऽस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदीविष्ये देव एव प्रमाण। पूरे 24-25 श्लोकों में मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ श्लोक है जो कि शरणागति के लिए है, सरेंडर होने के लिए है। जाना कि तुम मम भव भवे यत् यादृच्छ दुःखम्। जानते हो भगवान आप सब, मैंने जितने और जैसे दुख जन्म जन्मांतरों में भोगे हैं कहने की आवश्यकता है। जाना कि तुम मम भव भवे यत् यादृच्छ जातम यत् स्मरणमपि मे सत्वं निश्चिनस्ति। अगर मैं उन जन्म जन्मांतरों के दुखों का आपके सामने खड़े होकर स्मरण भी करूं तो ऐसा लगता जैसे छाती में किसी ने वर्षी चुभो भाला चुभो, इतनी पीड़ा है। मैंने वो पीड़ा कैसे झेली है ये मैं जानता हूं, आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर मैं उस पीड़ा को स्मरण भी करूं तो मुझे और दुगनी पीड़ा होगी, इसलिए मैं उसका स्मरण भी करना नहीं चाहता हूं। हमने तो सिर्फ ये सुना है जातम यस्य स्मरणमपि मे सत्वं निश्चिनस्ति। हमने तो सिर्फ ये सुना है कि तुम सर्वेशा सत्रपि इति च, आप सबके स्वामी हो और अत्यंत दयालु हो। हमें तो आपकी दो विशेषताएं मानी, आपने अपने आप को जीत लिया है इसलिए आप सबके स्वामी हो। आपने किसी को बहुत टेरर क्रिएट करके और सब पे अपनी मालिकियत आरोपित की हो, ऐसे स्वामी नहीं हो आप। सबने आपका स्वामित्व स्वीकार किया क्योंकि आप अपने स्वामी स्वयं हो गए, इसलिए तुम सर्वेशा सकृपि पिता अत्यंत कृपालु अत्यंत दयालु हो। और फिर मैं आपकी शरण में आ गया। अब इस विषय में अर्थात मेरे जन्म जन्मांतरों के दुखों के विषय में आपको जो करना हो वो करो, मेरे लिए तो आप ही प्रमाण हो, मुझे आपसे कुछ करने के लिए कहने की आवश्यकता। क्या कभी अपने मन में इस तरह का भाव आता है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब इस तरह भक्तियां जो पूर्वाचार्यों ने की हैं उनके अपन अर्थ जानते हैं तो लगता है कि उनके भीतर इस तरह का भाव, हमें तो इस भक्ति की पंक्तियां पढ़ करके उनका अर्थ जानने के बाद भी भगवान के सामने भक्ति करते समय वैसा भाव नहीं आता, और इन्होंने तो ऐसा भाव आने के बाद इन शब्दों में इस श्लोक में अपने भावों को व्यक्त भी कर दिया। जन्म जन्मांतरों के दुखों को भगवान, आप हम तो अपना रोना लेके बैठ जाते भगवान के, और आचार्य वादीराज कह रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, आप क्या कहना, आप सर्वे सब तो जानते हो, आपसे छुपा क्या है, कुछ भी नहीं छुपा। आप तीन लोग के नाथ हो और तीनों कालों की बातें जानते, फिर आपके पास जाके मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जो सब जानता हो उसको हम बता दें तो ये तो इसका मतलब है हमें उस पर विश्वास नहीं है। तो एक इतना बड़ा विश्वास अपना व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे कुछ कहना भी नहीं, मैं उस दुख का स्मरण भी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ इस समय आपके सामने आपके गुणों को ध्यान में रखे हूं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो, अत्यंत दयालु हो। जब मैं आपके चरणों में आ गया हूं तो क्या आपकी दया आपकी कृपा मेरे ऊपर नहीं बरसे? ये तो संभव ही नहीं है। आप तो निस्तार सबके हितैषी हो, सब पर कृपा रखने वाले हो, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा ज्यों की ज्यों है। सवाल ये है कि सूरज तो हमारे दरवाजे तक आता है, हम जितना खोलेंगे उतने ही भीतर प्रवेश करेगा। सब पर कृपा बरसे लेकिन जो जितना निर्मल चित्त होगा या जो जितना अपने चित्त को निर्मल बना करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा उसको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। श्रद्धा हमेशा रिस्पॉन्स देती है श्रद्धालु के लिए, श्रद्धे दे या ना दे। जिसके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स हमें कम मिलता है, जो हमारा फुली डिवोशन हो, जो हमारी श्रद्धा हो। हम गए तो हते महाराज के पास, उनमें देखो नहीं है बेटो, और लोगों से चर्चा में लगे। ये जो शिकायत भरा चित्त है ये डिवोट नहीं है, इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो इसके मायने है कि हमारी श्रद्धा में कहीं कमी थी, इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इग्नोर नहीं किया गया है पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, इसके मायने हमारे डिवोशन में कमी। ये हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें भगवान के सामने खड़े होकर जो हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें ये लगता है कि क्या हुआ इससे, कैसे कैसे सब कुछ है ऐसा, लेकिन ऐसा असावधान और हो जाता हमारे लिए, हमारी श्रद्धा की कमी हमें नहीं दिखाई पड़ती। जिसके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर उसकी कमी दिखाई पड़ती है। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि दर्पण के सामने पहुंचे और उसमें कालिक दिखाई पड़ी तो दर्पण को दोषी ठहरा करके वापिस आ गए। अपने चेहरे की कालिक दर्पण में दिखी थी तो अपने चेहरे को साफ नहीं किया, दर्पण को दोषी ठहराया कि दर्पण में तो कालिक दिखाई पड़ती। लोगों की भक्ति में कमी यहीं पर रह जाती है और इसलिए हमारे जीवन में भक्ति शांति और संतोष नहीं दे पाती है। चित्त में से हमारे अहंकार नहीं हट पाता है और जब तक ये अहंकार और क्रोध हमारे मन से नहीं हटेगा, चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में वो जो भगवान बनने की क्षमता हमारे भीतर है वो अभिव्यक्त भी नहीं। क्षमता होते हुए भी अभिव्यक्ति कब होगी, जबकि हम इन सब चीज़ों को सब्साइड करेंगे, क्रोध और अहंकार को। दो चीज़ें भक्ति में बहुत बाधक है। आज इन्हीं दोनों चीज़ों पर एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा। सुबह सुबह पढ़ रहा था और वो घटना हाथ आ गई। मैंने कहा आश्चर्य है कि इस तरह की भी चीज़ें हैं हमारे जीवन में कि हमारा अहंकार और हमारा क्रोध दोनों हमें भगवान से दूर रखते हैं। उनकी भक्ति करते हुए भी हम अहंकार पुष्ट कर लेते हैं और उनकी भक्ति करके भी हम अपने क्रोध को जीत नहीं पाते, और तब भगवान की भक्ति हमारे जीवन में कोई परिवर्तन। पहली चीज, पूरी तरह हम श्रद्धा व्यक्त करें, अपने को छोड़ दें भगवान के चरणों में जैसे वादीराज महाराज कह रहे हैं। और दूसरी चीज, कब हम सरेंडर हो पाएंगे, कितना अहंकार छोड़ना पड़ेगा दूसरे के चरणों में झुकने के लिए, दूसरे की प्रशंसा करने के लिए। बहुत मुश्किल है प्रशंसा कर पाना, प्रशंसा सुन पाना। अहंकार बीच में बाधक बनता है, हम सरेंडर नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर हमने भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है, हमने बहुत देखा, वर्षों से देखता हूँ, हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करके अहंकार का पोषण करते हैं। जहाँ हमारा अहंकार पुष्ट नहीं होता वहाँ से हम विड्रॉ कर लेते हैं। देखो तो मैं तो कदम कदम पर देख करके बहुत दंग रह जाता हूँ कि लोग सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में भी आते हैं तो अपना अहंकार का पोषण करने के लिए, और जिन चरणों में अहंकार का पोषण नहीं होते मिलता, जिन चरणों में, उन चरणों को वो कहते हैं अरे ये कोई काम की नहीं है, ये ठीक है। बड़ा आश्चर्य लगता है, जिस मंदिर में उनकी पूछ होगी उस मंदिर में जाएंगे, पूछ का बड़ा। जिन महाराज के पास उनको पूछा जाएगा वहां जाएंगे। श्रद्धा से नहीं जा रहे, श्रद्धा से दर्शनों को नहीं जा रहे। वहां पर बहुत बहुत मुझे अहंकार मेरा, चार लोगों के बीच जरा कॉलर खड़ी करके बाहर निकलता हूँ कि देखा क्या अप्रोच है, अब भी 5 मिनट बात करके आए, क्या समझ रखा तुमने हमको, इतनी अप्रोच है हमारी। इसके लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भैया ये भक्ति चित्त को निर्मल नहीं करेगी, और नहीं कर रही है इसका मतलब है कि कहीं भीतर ही कमजोरी है, उसको निकाल। बैठे चाय पिए अपन, रोज चाय को बैठते हैं यहाँ पर, इसलिए रोज बैठते हैं कि भैया जो मन के भीतर कमजोरियां हैं, जो अनादि काल का संस्कार है उससे हटाना है। हमने जान लिया, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अपन अपने को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अपने अपराधों का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा ही तो होता हमारे साथ भी? ऐसा हम भी कई बार जो है करने लगते हैं, नहीं हमें इससे बचना था। एक युवक पहुंचा था साधु बाबा के पास कि मुझे भक्ति सिखाइएगा, भगवान की भक्ति जैसी आप करते हैं, जैसी तल्लीनता आपके अंदर आ जाती मेरे भीतर आती नहीं, मेरा चित्त निर्मल ही नहीं हो पाता है भगवान की भक्ति से। समझ, उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम जल्दी से जाओ नहा धो करके, जरा शुद्ध होकर के आओ तब तो फिर बताऊंगा। वो गया नहाने धोने, उतने में जो है आश्रम में जिसमें बाबा जी रुके थे उसमें झाड़ू लगाने वाले से कहा कि देखो वो भी नहा करके आएगा, तो जैसे वो नहा करके दरवाजे के भीतर आए और हमारे पास आने लगे तो इतनी जोर से झाड़ू लगाना कि धूल उसके ऊपर चढ़ जाए, और सुनो अगर हो सकता है कि वो मारने दौड़े तुम सावधान रहना। हाँ, उसको समझा दिया, जब तक वो नहा नहीं गया सिद्ध होकर के नहा करके आया, नहा के जैसे दरवाजे से भीतर आया और उसने जोर से झाड़ू चलाई तो धूल उड़ करके उसके नहाए धोए सब पर, बस वो तो पहले ही कह दिया था साधु जी ने कि सावधान रहना, वो तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और मारने के लिए दौड़ा, तो वो पहले से ही तैयार था, वो दूर हट गया। जो कहना मन में मुंह में जो आया वो अब शब्द कहे, और फिर से जा करके स्नान करके फिर आकर के महाराज के पास बैठ गया। तो महाराज बताओ भगवान की भक्ति? बोले अभी तो तू दूसरे के प्रति पशु के समान मारने दौड़ता है, अभी तेरे से भक्ति नहीं हो सकती, जा अभी तो भगवान के नाम का स्मरण कर, एक वर्ष बाद आना, बताओ अभी भक्ति नहीं होगी तेरे से, एक बरस भगवान का नाम भर तू ले फिर बाद में आना। वो गया एक वर्ष तक भगवान का नाम जपता रहा, की बार आया, महाराज बताओ भक्ति भगवान की कैसे करें हम? अपन लोग रोज करते हैं, अपन को कितनी आसानी से भक्ति मिल गई है, और उसको देखो साल भर जाप देता रहा, वो माला फेरता रहा भगवान का नाम, अभी भक्ति शुरू नहीं है। आस्ताम तबस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास। अरे दूर रहो आपका अभी स्तवन, आपकी स्तुति और भक्ति तो दूर रहो, आपका नाम भी मेरे चित्त को ठीक ऐसे ही निर्मल करता है जैसे आकाश में दूर है सूर्य लेकिन उसकी किरणें आकर के कमल को खिला देती है। उसके नाम स्मरण का परिणाम ये हुआ कि साल भर बाद जब आया तो फिर गुरुजी ने कहा कि नहा धो के शुद्ध होके आओ। वो फिर नहाने गया तो फिर आश्रम में उसको कहा कि सुनो अब की बार आवे तो थोड़ा पास जा करके झाड़ू छिवा देना, बस और कुछ नहीं। हाँ, और जैसे ही नहा धो करके आया तो उस झाड़ू लगाने वाले ने धूल तो नहीं उड़ाई, अब की बार झाड़ू धीरे से ऐसी झाड़ी कि उसको लग गई झाड़ू, अब की बार मारने तो नहीं दौड़ा लेकिन अब शब्द जरूर कहे गुस्से में आकर, और फिर से नहा करके फिर महाराज के पास आया। महाराज भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए बताओ तो। अरे भाई तू तो अभी दूसरे को देखकर कुत्ते के समान भौंकता है, अभी तेरे से भक्ति नहीं, देखो। हाँ ऐसा कह दिया बाबा जी ने, अभी तू एक साल और भगवान का नाम ले फिर बाद में भक्ति बताऊं तेरे को। अब वो साल भर फिर चले गया, भगवान का नाम ले रहा है, अरण सिद्ध धरण सिद्ध कर रहा है, अभी अभी अहंकार और क्रोध दोनों की परीक्षा हो गई। पहली बार कि मैं इतना बड़ा और मेरे ऊपर धूल डाल दी, अहंकार को चोट पहुंची। दूसरी बार झाड़ू का स्पर्श होने से क्रोध। अब तीसरी बार जब आया तो फिर बाबा जी ने कहा कि नहा धो के आओ, बस जल्दी बताता हूं मैं अभी। वो नहा धो करके फिर से आया तो धीरे से झाड़ू लगाने वाले को कह दिया, अब की बार तो जितना कचरा तेने झाड़ के इकट्ठा रखा सब ऊपर डाल देना। हाँ और कठिन है। कहानी में तो बहुत आसान लगा मुझे जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा ऐसा तो अपने साथ भी हो तो अपन भी गड़बड़ा जाएंगे, अपन भी गड़बड़ा जाएंगे। इतनी निर्मलता परिणामों की बहुत मुश्किल है, तब हो पाएगी भक्ति। अभी तो अपन तो भक्ति का एक तरह से कहना कि व्यवहार अभी अंतरंग में नहीं आई है, भक्ति का तो अपन बाह्य रूप ही कर पाते हैं, अभी इतना चित्त निर्मल नहीं हुआ। अब आता है वो नहा धो करके और पूरा कचरा उसके ऊपर वो झाड़ू लगाने वाला डाल देता है, लेकिन 2 वर्ष तक उसने नाम स्मरण किया था, शांत खड़ा रहता, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, बल्कि हाथ जोड़ करके उस झाड़ू लगाने वाले से कहता कि आपका बड़ा मेरे ऊपर एहसान रहेगा, आपने मेरे अहंकार और क्रोध को दोनों को जीतने का जो उपाय मुझे करा उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मन से उसके शब्द निकले और फिर से जब नहा धो करके आया तब साधु जी ने कहा कि अब क्या करना है, कुछ शेष ही नहीं रहा, अब तो तुम जब चाहो तब भगवान की भक्ति शुरू कर दो, मुझे अलग से कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं, कोई विधि बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे चित्त से जिस प्रकार भी भगवान की भक्ति की जाएगी वो सब जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगी। भैया भक्ति तो वैसी ही है, एक तरफ भगवान के गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ अपने अहंकार और अपनी कषायों को हटाते चले जाते हैं, दोनों काम एक साथ चलते जाएं, एक तरफ हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाए, दूसरी तरफ हमारी विकारी अवस्था घटती चली जाए, बस इसी का नाम तो भक्ति है। वीतरागता बढ़ती चली जा रही है, राग द्वेष घटता चला जा रहा है, ये भक्ति हमारे जीवन को कहाँ तक ले जाएगी, भगवान बना देगी। क्यों? क्योंकि हम हमारे अंदर वीतरागता बढ़ती चली जा रही, राग द्वेष और विकार घटते चले जा रहे हैं। इस जो पूर्ण पूर्ण राग द्वेष से रहित है वही तो भगवान। अगर हम इस तरह इस भक्ति से लाभ लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं तो बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज नग्न स्वरूप तुम्हारा है, स्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोताऊं सब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की धनियों में अंतर जाला जीवानी मानो भव बंधन कर कर टूट पड़े दिल जावे अंतर की कलिया दिन रात लुटाया करके वो चम चम के अभिनर मैया ऐसा शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पशुपंची गुरुवर प्रणाम जानवे को बंद विधे पानवे को सफर पिछानवे को परम प्रमाणी है जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को सुखवे तारवे को यही दिन वाणी है
भक्ति के बाद मुझे उसका तुरंत क्या फल मिलता है थी। वो फल मुझे मिला कि नहीं मिला, इस बात को भी हमें विचार रखना चाहिए। अगर ये इतनी चीजें अपने मन में रहे कि मैंने क्यों भक्ति करी, भक्ति का मेरा उद्देश्य क्या है, कि मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए, और फिर मैं आज भक्ति करूँ है तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया। असल में कोई भी क्रिया हम करते हैं हमारे जीवन में उससे कोई परिवर्तन घटित हुआ है कि नहीं, ये मूल्यांकन भी हमें करते रहना। अपन लोग ये मूल्यांकन नहीं करते हैं कि मैंने जो किया उससे मुझे क्या लाभ मिला। हालांकि सांसारिक कामों में हम हर चीज का मूल्यांकन करते हैं कि आज मैंने दुकान इस तरह से चलाई है तो उससे मुझे इस तरह से प्रॉफिट हुआ है, कल मुझे और बेहतर ढंग से ये काम करना चाहिए जिससे कि और ज्यादा मुझे प्रॉफिट हो। तो फिर इसी तरह से हम भगवान के पूजा भक्ति और जो भी दान पुण्य की प्रक्रिया है, साध्याय है, इन सब में मूल्यांकन क्यों नहीं करते कि कल मैंने जब मैं मंदिर नहीं जाता था पर मेरे जीवन की नई पुस्तकों इस तरह थी और अब जब मैं आज मंदिर जाने लगा हूं तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन बहुत आंतरिक होना चाहिए। अगर लोग बाह्य परिवर्तन में ही संतुष्ट हो जाते हैं कि देखो इतना होता तो परिवर्तन हो गया, मैं इतने में संतुष्ट नहीं होना कि मेरे अंतरंग में कितना परिवर्तन आया है ये मुझे देखना चाहिए। आचार्य भगवंत क्या लिख रहे हैं कि दीप राग भैसे अगे मैं तो राग छिपे, यहीं से शुरू होती है भक्ति। मैंने पहले तो इस दीप रागता का कोई सानिध्य ही नहीं पाया था और इस वितरागता के अभाव में इस संसार में भटकता रहा और आज भी वो संसार के दुख उठा रहा हूं तो इस वितरागता के अभाव की वजह से। और अब मुझे वितरागता से भेंट हो गई, भगवान से मिलने का मतलब है वितरागता से भेंट होना। मेरे मन में वितरागता धीरे धीरे आने शुरू हो जावे तो समझना कि हाँ भगवान से मेरा मिलन हुआ हुआ कि जिसको कहते हमने दर्शन करा हुआ कि भक्ति शुरू की। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन जिस वितराग भगवान की भक्ति करते हैं उसकी वितरागता का हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि अरुण भगवान के तीन गुण हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वितरागी हैं। तो सर्वज्ञता को हितोपदेश होते समय मालूम पड़ती है, सर्वज्ञता दिखाई नहीं पड़ती और हितोपदेश भी जब समय स्वयं में बैठे हो तब समझ में आता है। लेकिन जिन बिंब में तो न सर्वज्ञता दिखाई पड़ती न हितोपदेशी समय दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ती है सिर्फ वितरागता। और वो भी अगर हमें दिखाई ना पड़े तब से हमारी भक्ति शून्य रह जाएगी। तब जरूरी है कि हम भगवान की वितरागता का दर्शन करें, तब कह पाएंगे कि वितराग भेटो अगे मैं तो राग कुटे। हे भगवान अब मेरे इस राग की कुटोर को, ये जो राग दोष है मेरे मन की कुटोर है अर्थात खोटी आदत है, मुझे राग दोष की आदत पड़ गई है क्योंकि मेरा स्वभाव राग दोष नहीं है। ऐसा मेरे मन में भाव आना शुरू हो गए तब शुरू होगी भक्ति। कल वादिराज महाराज जैसी भक्ति कर रहे थे, अपन ने उससे एक बात सीखी थी कि भगवान के चरणों में अपने को पूरी तरह से हम समर्पित कर दें, उनकी वितरागता के प्रति समर्पित कर दें और कह पावें ये बात कि मेरे इस संसार के दुखों के बारे में आप ही प्रमाण हो। अब प्रमाण के कई अर्थ निकाल सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज कि आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, मतलब सीधा सीधा कि आप समझदार हो, अब हमारे बारे में क्या करना है कैसा करना है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप करो, आप ही मेरे लिए प्रमाण है। जैसे अपन जो है डॉक्टर के पास जाकर के और अपने को सौंप देते हैं कि अब इसके बारे में तो हम कुछ जानते नहीं, आप ही हो हमारे लिए सब कुछ, आप जैसी बताओ वैसी हम करें, या कि आप ही कर दो हमारे लिए ठीक। एक तरीका तो ये है कि भगवान से कहें कि आप ही मेरे लिए समान है, अर्थात आप ही को जो समझ में आवे जैसा समझ में आवे तो मेरे जीवन का कल्याण करो। एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये है कि आप ही प्रमाण हो, अर्थात आपके ज्ञान में मेरे जीवन को लेकर के जो धन का है तो वही होगा। लेकिन अब इसमें बात क्या है, मैं अपने मन का हो जाता है तो अहंकार करता हूँ, अपने मन का नहीं होता तो संकलेश करता हूँ। अरे जब जैसा मैंने किया होगा कर्म, असाता के उदय में मुझे दुख आ रहा है, तो फिर मैं उसे क्षमता पूर्वक क्यों ना भोगूं, हर्ष और विषाद क्यों करूं। आप ही प्रमाण है इसके मायने है कि आपके ज्ञान में मेरे बाबत जो भी होना है वो सब स्पष्ट है। अब मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के ज्ञान के अनुसार मेरा परिणमन होगा ऐसा नहीं समझना। मेरा जैसा परिणमन होता है वैसा भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकता है, हमें नहीं मालूम रहता कि कल क्या होने वाला। तो जो कुछ भी घटित होगा वो भगवान आप तो सब जानते हैं कि मेरे जीवन में सुख दुख किस तरह से आने वाले हैं। अब जब मैं सुख आता है तो हर्षित हो जाता हूँ, दुख आता है तो विषाद करता हूँ। आज तो मैं आपको प्रमाण मान करके अपने हर्ष विषाद से बचना शुरू करता। भक्ति यहाँ से शुरू होगी। भगवान को प्रमाण कह रहे हैं इसके मायने हैं कि अब मैं जो भी कार्य होगा उसमें हर्ष विषाद नहीं करूँगा, विपत्ति आने पर मैं दुखी नहीं होऊंगा, और मेरे मन का सब कुछ मनोनुकूल संसार में उपलब्ध हो जाने पर मैं अहंकार नहीं करूंगा, क्योंकि संकल्प और अहंकार ही कर्म के बंध का कारण और संसार के दुखों का कारण है। ये मैंने आपकी भक्ति से सीख लिया। अपन तो सोच रहे थे कि चाल लाइन में पढ़ के और आगे इतना उन्हें है, बहुत आसान है, इतना तो अपन करते ही हैं कि चार लाइनें पढ़ी और आर्ग चढ़ा दिया और वो भी हमारी भक्ति और वो भी हमारी पूजा, ये तो अपन ने कर लिया। लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया भी तो है, उसके बाद की प्रक्रिया भी शामिल करनी चाहिए। भगवान कछु हमारे जीवन का कल्याण करने आएंगे नहीं, जो मेरे लिए प्रमाण है इसका मतलब क्या है, ये है कि मैं उनसे ये शिक्षा प्राप्त करूँ कि इस संसार में हर उस विषाद करके मैं इस संसार को बढ़ाऊं नहीं, बल्कि भगवान के समान सुख दुख में समता भाव रखूं। और तीसरी चीज क्या है, आप ही मेरे लिए प्रमाण है, अर्थात आप ही मेरे लिए आदर्श है, आइडियल है। आप मेरे लिए जब आदर्श है तब फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके जैसे बनने के लिए प्रयत्नशील हूं। सीधा अर्थ नहीं है, भादीराज महाराज भक्ति कर रहे हैं जिनके बारे में लिखा है कि उनके जैसा तार्किक और उनके जैसा वैयाकरण और उनके जैसा कवि कोई नहीं था, ऐसा कहते हैं। और दूसरे आचार्य भगवान भादीराज महाराज के बारे में, और भगवान के सामने वो इस तरह भक्ति कर रहे हैं, वो ये थोड़ी कहना चाह रहे होंगे कि आप प्रमाण हैं इसलिए आप ही जो कछु करने हो तो कर दो, हमारे बस को तो कछु नहीं। वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको मैंने अगर प्रमाण माना है तो अब मेरा कर्तव्य मुझे आपके दर्शन करके आपकी भक्ति करके याद आ गया है कि मेरा कर्तव्य तो ये है कि मैं निरंतर आपके जैसे बनने का पुरुषार्थ करूं। अगर हम इस पद से इस तरह शिक्षा ले लें और अपने भक्ति को डायरेक्शन दें कि जाना सीतम मम भव भवे यत्र यादृक्ष दुखम जातम यत्र स्मरण मपिलेशस्य वन्येऽस्ति तम सर्वेशा सतपीतिचा तम उपेतोऽसि भक्त्या यत् कर्तव्यं तभी उसी देव प्रमाण। मेरे विषय में जो कि मैं इस संसार में भटक रहा हूँ और दुख पा रहा हूँ, इस मेरे इस दुख के विषय में आप ही प्रमाण है। इस दुख को दूर करने में आपकी भक्ति मेरे लिए कारण बनेगी तो कैसे बनेगी, मैं आपके जैसे बनने का पुरुषार्थ करूंगा और हर्ष विषाद से बचूंगा। दो बातें अपने जीवन में शामिल कर लें कि यहां से भक्ति करके निकले तो भोजन की थाली पर जरा भी कोई चीज अपने मनोनुकूल ना हो तो शिकायत करने का मन ना बने। मैं तो भक्ति पूजन करके लौटा हूँ, अब भी नैवेद्य चढ़ाई है मैंने और क्षुधा रोग के निवारण के लिए, और यहाँ पर चार चीजें मेरे मन की नहीं है तो मैं मुश्किल में पड़ रहा हूं, और वहां तो बोल क्या है, वो भक्ति करके आए हो वहां पर, यहां तो मैं भक्ति करके और भगवान से ये शिक्षा लेके आया हूं कि हर्ष विषाद नहीं करूंगा, और वहां घर पहुंचते ही मालूम पड़ा है कि वो धंधे में 4 पैसे का घाटा हो गया है, तो मैं विषाद से गिर गया हूं, अब भी भक्ति करके आया, लेकिन 4 पैसे बढ़ गए हैं मेरे, तो मैं बड़े हर्षित होकर के और सेलिब्रेट कर रहा हूं पूरे दिन को कि आज तो मेरा दिन इतना बढ़िया है, हो सकता है कि कल फिर विषाद में गिर जाऊं, इसलिए सावधानी रखो मैं आज भी हर्षित होकर के संसार ना बढ़ाऊं, और कल जब विषाद आवे तो भी दुखी होकर के अपना संसार ना बढ़ाऊं। भगवान से तो यही शिक्षा लेके आया हूं भैया, भक्ति तो ऐसी ही हो। और आज मैंने कितनी कोशिश करी भगवान के जैसे बनने की, कितने क्षण मेरे गुजरे हैं दीपराजता के, सारा दिन निकल गया राग देश में, कोई एकाध सेकंड दीपराजता का स्वाद लेने का मन हुआ, जैसे भगवान बैठे हैं वैसे बैठा हूं मैं, दिन भर में एकाध बार हाथ से हाथ धरके अपनी तरफ देखते हुए सारा दिन दुनिया की तरफ देखते बीत गया, उसका वैसा और उसका वैसा, और उसने ये नहीं किया और उसने वो नहीं किया, मैंने आज मुझे क्या करना था भगवान के जैसे सारे संसार से विरक्त होकर के अपने आत्मा के बारे में मैंने दिन भर में विचार किया कि नहीं कि अकेले घंटे भर पूजा करके वापिस आ गया हूं, नहीं भैया अब हमें इसमें और जोर देना चाहिए, हमने अगर पूजा और भक्ति शुरू करी है बहुत अच्छा है, जो पूजा और भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो करना शुरू करना चाहिए, और जो पूजा और भक्ति कर रहे हैं उनको अपनी पूजा भक्ति में ये लेसन और बोल देंगे कि अब मुझे एक पाठ और आगे पढ़ना, ये पाठ तो मैंने पढ़ लिया, अब मुझे घर पहुंच करके इस बात का अभ्यास भी करना है। हम लोगों के जीवन से ये बात गायब होती चली जा रही धीरे धीरे, सुबह शाम हम बैठते नहीं शांति, एक मनुष्य के लिए हमारे पास अपने कल्याण के विचार करने का वक्त तक नहीं है, इतना हमने शेड्यूल टाइट बना लिया, इतने हम सांसारिक राग देश में और लग गए हैं, हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम का स्मरण किसी ने थोड़ी देर को किया था तो उसका कल्याण हो गया, और अगर मैं आपकी पूजा भक्ति करके और संसार में जाऊं लेकिन आपके नाम को याद रखूं और मेरा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पाप दैवम तमन उपदंड जीव के लोपरिष्ट पापाचारी मरण समये सारे की सौक्षम का संदेह हो यदुपलवते भात्मस्की प्रभुत्म जलपन जाते मंदिरमल तन नमस्कार चक्र। हे भगवान, जीवन भर कुमार के द्वारा एक मरते हुए कुत्ते ने आपके पंच नमस्कार मंत्र को सुनकर उस पर अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी, उसे ग्रहण कर लिया था, तो मैंने अकेले से नहीं काम चले उसको ग्रहण करना, उसने ग्रहण कर लिया था, उस पर उसका श्रद्धान हो गया था, और उस श्रद्धान के फलस्वरूप उसने देव परवाह के जो सुख हो सकते थे वो सुख प्राप्त कर लिए, हालांकि वो भी सांसारिक सुख है, लेकिन चलो उसने कुछ तो प्राप्त किया आपके प्रति, उसके मन में श्रद्धान आने से उसको उतना अधिक ज्ञान नहीं था, उसने उतना आचरण का पालन भी नहीं किया, जीवन भर तो पापाचारी जीवन भर तो उसने पाप का ही आचरण किया, लेकिन क्षण भर को भी इतने पाप में लिप्त होकर के भी क्षण भर को आपके नाम का स्मरण कर लिया, उसने ग्रहण कर लिया, उतने मात्र से उसको देव पर्याय के सुख मिल गए, तो कह संदेह हो यदुपलभते वासवत्सी प्रभुत्वम। कोई अगर इंद्र का वैभव और तमो शरण का वैभव प्राप्त कर ले वे कौन, जलपन जापई मंजी रमनई तन नमस्कार चक्रम। अगर सुबह दोपहर शाम और बैठ करके मणियों की माला पर, हे भगवान कौन से मणि, ये वाले मणि जो यहाँ मिलते हैं मोती, गरीब आदमी को कहाँ से मिलेंगे, तब तो फिर उसका कल्याण ही नहीं होगा, ऐसा है क्या, तो मणि ही, अरे भाई मन के, ये वाले मन के नहीं, भीतर के, भीतर का जितना उज्जवल मन होगा उस पर फेरो माला, बाहर के तो मोती बहुत उज्जवल है, बाहर की मणियां तो बहुत उज्जवल है, उन पर तो माला फेरना अकेले से नहीं चलेगा, भीतर के उज्जवल मन से फेरी गई माला ज्ञानी व्यक्ति है अपने अत्यंत उज्जवल मन से प्रफुल्लित होकर के निरंतर आपके मंत्र का जाप किया हो और उसको अगर समूह शरण का वैभव और इंद्रों का वैभव मिल जाए तो कह संदेह हो, कोई संदेह नहीं है। ऐसा वादीराज महाराज पूरी भक्ति विश्वास के साथ करते हुए और दूसरे को भी कह रहे हैं कि एक बार जरा कोशिश तो करो। वो तो स्वयं कोशिश कर ही रहे हैं, सबको मालूम है कि उनके जीवन में और किस तरह की मुश्किल आके खड़ी हुई है। एक तो उनका रोग जिसकी उनने कभी चिंता नहीं करी, लेकिन अब चिंता करनी पड़ रही है क्योंकि सेठ जी कहके आए हैं कि हमारे मुनि महाराज तो सोने की देह के होते हैं, स्वर्ण के समान उज्जवल होते हैं और इधर तो कोढ़ हो गया है, तो जिंदगी भर उसकी उसके हटाने का कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ, लेकिन अब परोपकार के लिए धर्म की प्रभावना के लिए क्या करूं। ठीक है, वो भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब एक पाप के आचरण करने वाले का इतना काम हो सकता है तो मैं तो 24 घंटे आपके नाम का स्मरण कर रहा हूं, मेरा अगर काम बन जाएगा तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हाथ जोड़ करके काम बने जाओ हमारे, हम भक्ति कर रहे देखो जिंदगी निकल गई हमारी। अपन ऐसे ही भक्ति करते हैं कि अब इतने दिन हो गए भगवान, अभी तक कच्छू नहीं हुआ, हम तो 3-4 साल से पूजा कर रहे हैं आपकी, थोड़ा तो ध्यान दो। ऐसा कहने लगते हो। वादीराज महाराज की भाषा देखो, वो कह रहे हमने सुना था कि जीवन भर कुमार से किसी पापी से पापी कुत्ते ने आपका नाम सुनकर के अपना कल्याण कर लिया और मुझे जिंदगी में बन गई, मेरा तो हो ही जाएगा। तो डेफिनेट आप क्या करेंगे, आपसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और अगर आपकी भक्ति कर रहा हूं ठीक ठीक उज्जवल मन से तो मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, यहां तक कि समूह शरण का वैभव इंद्रों का वैभव भी प्राप्त हो सकता है। मोक्ष रूपी लक्ष्मी वास्वत्री प्रभुत्व, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का स्वामित्व भी प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी चीज में भक्ति इतनी ऊंचाई दे सकती है, एक पतित आचरण वाले को ऊंचाई दे सकती, तो जो अपने आचरण को संभाल लेंगे उसको ऊंचाई नहीं मिलेगी क्या। ऐसा विचार करके और अपने जीवन में इस भक्ति को कंटिन्यू करना चाहिए। जो यहाँ हम थोड़ी देर करते हैं वो हमारे जीवन में कंटिन्यू हो जाए। 1 घंटे हमने यहाँ पर पूजा भक्ति करी है, उसको 23 घंटे नाम स्मरण भगवान का बना रहे और अपना मन उस नाम स्मरण से उज्जवल होता रहे। पुराने लोग तो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रख देते थे कि चलो डांटेंगे जी तो भी भगवान का नाम ले, बताओ आप बुलाएंगे तो नाम हो पता नहीं ध्यान आ जाए एकदम, महावीर नाम रख दिया तो महावीर दिन में 25 दफे कहेंगे और एक आध बार सही में कह दिया तो काम हो गया, ध्यान आ गया कि अभी भगवान महावीर स्वामी का भी नाम है और मैं क्या कर रहा हूं उसको ऐसे बांट रहा। 24 घंटे हमें उस चीज का स्मरण बना रहे, भक्ति वो महत्वपूर्ण है और विश्वास पूर्वक भक्ति होती है। विश्वास की छोटी सी घटना मुझे पढ़ने में आई, वो आपको सुना दूं। छोटी छोटी घटनाएं रह जाती हैं, बाकी व्याख्या तो जिसका जितना शोकसम है उतनी समझ में आती हुई है। ये तो शोकसम का काम है, हमने तो व्याख्या कर दी, पर सबको सब थोड़ी पूरी याद रहे, पेपर कार्ड में भर रहे हैं, अपने भीतर तो उसके भाव रहेंगे, वो घटना से अपन जल्दी समझ जाएंगे। तो मित्र थे, दोनों सेना में भर्ती हो गए और जहां पर युद्ध हो रहा था वहां पर युद्ध के लिए चले गए, लेकिन दोनों के अलग अलग कैंप थे, दोनों की आर्मी अलग अलग थी, दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास बहुत था। जब मैं तो ये सोचता हूं कि सांसारिक विश्वास इतना पक्का हो जाता है तो परमार्थ में हमारा भगवान के प्रति विश्वास और उनकी भक्ति से मुझे कुछ लाभ होगा, ये विश्वास हो क्यों नहीं पाए। अपन तुरंत के तुरंत मुझे लाभ हो जावे सो तो अपना साथ सब जावे सो तो अपन को विश्वास हो जाता है, लेकिन भक्ति वास्तव में हमें कोई उपलब्धि दे सकती है, वो भी मुक्ति दे सकती है, ऐसा विश्वास सहसा नहीं होता। सांसारिक रूप से तो विश्वास हो जाता, उन दोनों के बीच में अत्यंत प्रगाढ़ मित्रता थी, विश्वास था, और लड़ाई के दौरान एक किसी खंडक में है, दूसरा दूर किसी खंडक में है रात के समय, और एक बहुत घायल होकर के कराहता है और पुकारता है अपने मित्र को कि भाई अब मेरे जीवन का अंतिम समय है, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। रात के सन्नाटे में तो बहुत दूर तक आवाज जाती है, तो उसे आवाज सुनाई पड़ रही है, अपनी खंडक में छुपा हुआ है, वो दोनों छुपे हुए हैं, लेकिन आवाज सुनाई पड़ रही है कि आखिरी समय में तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। उसके कप्तान से पूछता है कि मैं उस खंडक तक चला जाऊं जहां से कि आवाज आ रही है, मेरा मित्र मुझे बुला रहा है। अब उसका कप्तान तो कहता है कि क्यों मुश्किल में डालते हो अपने आप को, और इतने ही तुम अगर बाहर निकल करके शत्रु की नजर में आ गए तो हम सब जितने खंडक में हैं वो सब भी मारे जाएंगे, जरा तो विचार करो। पर आवाज के बाद आवाज आती है, उससे रहा नहीं जाता, कप्तान की आज्ञा नहीं होने पर भी, मना करने पर भी खिसकते खिसकते और वो अपने मित्र के पास पहुंच जाता है, लेकिन मित्र तो प्राण छोड़ चुका है, उसकी देह को खींच करके अपने खंडक तक पाता है, मृत देह को। कप्तान नाराज होता है कि देखो मैंने कहा था ना, आखिर वहां जाने से क्या लाभ हुआ, वो तो इतना घायल हो चुका था कि उसे मरना ही था और वो मर गया ना। तब मालूम उसने क्या कहा, बहुत देर तक उसने आवाज लगाई थी लेकिन उसके प्राण ऐसे नहीं छूटे हैं, जब मैं पहुंचा हूं तब उसके प्राण छूटे हैं, मेरे पहुंचने तक वो जीवित था, मेरे पहुंचने के एक क्षण बाद मरा है, वो मेरा इंतजार कर रहा था, जब मैं पहुंचा तो उसके आखिरी वाक्य थे कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। इतना विश्वास, मैं उस घटना को पढ़ के सोचता कि इतना विश्वास संसार में एक दूसरे के प्रति हमारा हो सकता है क्या? ठीक ऐसे ही मरण के समय, वैसे नहीं, आखिरी मरण के समय ये विश्वास हमारे भीतर नहीं आता कि मैंने जिंदगी भर भगवान का स्मरण किया है, मेरा बिगाड़ नहीं होगा, मैं शांतिपूर्वक अपनी देह को छोड़ रहा हूं और अपने आगे की जीवन की यात्रा शुरू कर रहा हूं। जब भी कोई विपत्ति आती है तब क्यों नहीं ये विश्वास मेरे भीतर जागृत होता कि सारी विपत्तियां अपने आप दूर हो जाएंगी, मैंने भगवान का स्मरण किया है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं। बस ये इतना विश्वास अगर कदम कदम पर, हर के मौके पर और विषाद के मौके पर और जीवन के अंत समय तक अगर ये विश्वास हमारे मन में बना रहे कि मैंने भगवान का स्मरण किया है, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को मैंने अपना अनुराग व्यक्त किया है, तो मेरा बिगाड़ नहीं होगा, मैं अपने परिणाम संभाल करके अपना कल्याण कर लूंगा, अगर ये विश्वास, इस विश्वास से हम भक्ति करें तो हमारी भक्ति भी मुक्ति का कारण बन सकती है। इसी भावना के साथ कि हम सब भक्ति करें और अपने मन को निर्मल बनाए, बोले आचार्य विवर विद्यासागर में। गुरु Thank you.